ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेम उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखाम्बितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानसते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य नंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 47। अथेश माया रचितेषु संग गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तु भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। यथेश माया रचितेश संग गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तु भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। बोलिए। धन्यवाद। शब्दार्थ अतः अतएव ईश माया भगवान की माया के द्वारा रचितेषु रचे गए संगम अनुरक्ति गुणेषु प्रकृति के गुणों में गंधर्व पुर उपमेषु जिनकी उपमा गंधर्व पुर से भ्रम से दी जाती है पुर के भ्रम से ऐसा नगर या पुर है जो जंगल तथा पर्वतों पर दिखता है। रूढ़म अत्यंत शक्तिशाली प्रकृतिया प्रकृति के द्वारा आत्मनि परमात्मा में विश्वकर्तु सारे ब्रह्मांड के सृष्टा की भावेन भक्ति से हित्वा त्याग कर तम उस भगवान की अहम मैं प्रपद्ये शरण में जाता हूँ। अनुवाद एवं तात्पर्य हिस डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, अतएव मुझे भगवान की माया द्वारा सृजित वस्तुओं से आसक्ति को त्याग देना चाहिए। मुझे भगवान के विचारों में संलग्न होना चाहिए और इस तरह उनकी शरण में जाना चाहिए। यह भौतिक सृष्टि भगवान की माया से सृजित होने के कारण पर्वत पर या जंगल में स्थित काल्पनिक नगर के सदृश है। हर बद्ध जीव को भौतिक वस्तुओं से प्राकृतिक आकर्षण एवं आसक्ति होती है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि इन्हें त्याग कर भगवान की शरण में जाए। तात्पर्य, हवाई जहाज द्वारा किसी पर्वतीय क्षेत्र से गुजरते समय आकाश में मीनारों तथा महलों से युक्त कोई शहर दिख सकता है या फिर किसी जंगल में ऐसी वस्तुएं दिख सकती है। यह गंधर्वपुर या माया जाल कहलाता है। यह समग्र संसार ऐसे ही माया जाल के सदृश है और हरेक संसारी पुरुष को इससे लगाव होता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रगति के कारण खटवांग महाराज को ऐसी वस्तुओं में रुचि नहीं रह गई थी। भक्त भले ही ऊपर से संसारी कार्यकलापों में लगा रहे, किंतु अपनी स्थिति को वह भली भांति जानता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। यदि कोई ईश्वर की प्रेमा भक्ति से संबंधित सारी भौतिक बातों में लगा रहता है तो वह युक्त वैराग्य में स्थित होता है। इस भौतिक जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत की यह मानसिकता है। महाराज खटवांग उपदेश देते हैं कि मनुष्य को सारी भौतिक आसक्ति त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करे। इस तरह जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। यह शुद्ध भक्ति योग है जिसमें वैराग्य विद्या निहित है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिस्त्यमहं प्रपद्ये। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वे कृपा के सिंधु हैं और हमें विरक्ति ज्ञान तथा भक्ति सिखलाने के लिए आए हैं। चैतन्य चंद्रोदय नाटक 674। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इस वैराग्य विद्या के आंदोलन का सूत्रपात किया जिससे मनुष्य अपने को संसार से विरक्त करके भक्ति में लगाता है। भक्ति का कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र विधि है जो इस जगत में हमारे मिथ्या अहंकार का निराकरण करती है। बस इतना ही। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के इस पवित्र प्रसंग में शुकदेव जी गंगा तट पर महाराज परीक्षित को सूर्य वंश के राजर्षियों का इतिहास सुनाते हुए महाराज खटवांग के उद्गार को प्रस्तुत कर रहे हैं। सूर्य वंश के ये तेजस्वी पराक्रमी और वैष्णव राजर्षि है महाराज खटवांग। जिनकी स्मृति याद सुखदेव जी प्रारंभ में ही कर चुके हैं। कथा प्रारंभ करने से पूर्व, मंगलाचरण करने से पूर्व परीक्षित के संदेह को, जिज्ञासा को शमन करते हुए, उत्साह या प्रोत्साहन देते हुए, परीक्षित भी एक राजर्षि है, महाभागवत है, जिनकी रक्षा गर्भ में ही भगवान ने की थी। और भगवद गीता के लिए जैसे अर्जुन को माध्यम भगवान ने बनाए, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के लिए महाराज परीक्षित को चुना गया था। ऐसे राजर्षि के संदेह को नष्ट करते हुए सुखदेव जी ने कहा है द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वाम एता मिहायुष मुहूर्ताम सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरि। हे राजर्षि, तुम क्या चिंता करते हो, तुम्हारे पास 7 दिन है। मुहूर्तान, एक मुहूर्त में सर्वम उत्सृज्य, समस्त संसारिक भौतिक आसक्तियों को त्याग कर अभयम हरि पदम गत्वा, भगवान हरि का वो चिन्मय धाम जहां किसी भी प्रकार का काल का प्रवेश नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, भय नहीं है, उस हरि के धाम को गत्वा गए। कौन गए? खट्वांगो नाम राजर्षि, खट्वांग नाम के राजर्षि। उसको जब ज्ञात्वाम यह आयुषम क्षय, मेरा आयुष बस इतना बचा है, इसको ज्ञात्वा, इनको सुनकर जानकर एक ही मुहूर्त बचा था उनके लिए, खट्वांग जी के लिए, और उसी समय अपने आप को पूर्ण मनोयोग के साथ भगवान के स्मरण चिंतन में मन के साथ इंद्रियों को लगाए, और यम यम वापि स्मरण भावम, गीता का वह श्लोक जीवन में सार्थक कर दिया, भगवान के चरण बिंद को पा गए। प्रारंभ में ही इस राजर्षि की याद सुखदेव जी ने की है, हम ये कहना चाहते हैं। और वही खट्वांग महाराज जो सूर्य वंश के अंतर्गत राजर्षियों के इतिहास में नवम स्कंद में सुखदेव जी याद कर रहे हैं। खट्वांग राजा पृथ्वी के राजा होते हुए भी इतने समर्थ थे कि इसी शरीर से स्वर्ग में जाकर देवराज इंद्र की युद्ध में सहायता की। सौ शरीर स्वर्ग जाना ये कोई साधारण बात नहीं है, और उसमें भी देवताओं के राजा जिसके हाथ में वज्र है, जो समस्त असुरों को शांत करने की शक्ति रखता है जो वज्र, लेकिन उसके हाथ काबू से भी बाहर जो असुर थे, महाराज खट्वांग ने उसका वध किया, स्वर्ग को असुर आतंक से मुक्त किया। इसीलिए देवराज पुरंदर जी प्रसन्न चित से सभी देवताओं की उपस्थिति में खट्वांग से कहते हैं कि मांगिए राजा, क्या चाहिए आपको? ऑफर दिया जा रहा है देवराज इंद्र के द्वारा कि आपको क्या चाहिए, स्वर्ग या पृथ्वी के जो भी भोग है आप मांग सकते हो। लेकिन राजर्षि की बुद्धि व्यवसायत्मिका थी, अपने निश्चला मति, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में उनका चित्त वृत्ति लगा हुआ है, ये श्लोक इस बात को बताते हैं। इसके आगे के पूर्व के 4 श्लोक और आने वाले 2 श्लोक इस नवम स्कंद के नवम अध्याय के अंतिम 6 के 7 श्लोक खट्वांग के उद्गार है अपने देवराज इंद्र के प्रति। स्वर्ग में व्यासनंद सुखदेव जी की कृपा है और प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि हमको यथार्थ रूप में वही श्लोक आचार्यों के टीका और तात्पर्य के माध्यम से श्रवण कीर्तन का अवसर मिल रहा है, क्योंकि भागवत के ये श्लोक साधारण शब्द नहीं है, औषधि है, एक रसायन है जो जीव को अमरत्व की ओर ले जाते हैं। जीव के वास्तविक अर्थ, वास्तविक धन है, ये प्रसंग, इसके प्रसंग के अंतर्गत शिक्षा, संदेश, सभी कुछ। तो महाराज खटवांग पूर्ण रूप से इस भगवान की बहिरंगा माया शक्ति की ये सारे प्रोडक्ट जो भी वस्तुएं है उनको समझ रहे हैं। और माया मोहित चेत से, जिसकी चेतना माया से मोहित हो चुकी है, बद्ध जीव जैसे इन संसार के नश्वर और दुखदायी पदार्थों के प्रति चित लगाए बैठा है, आसक्ति लगाए बैठा है अपना मानते हुए, चाहे ये शरीर हो या शरीर के कुछ भी वस्तु या संबंधी हो, जो दुख का मूल कारण है, उससे परे हो चुके हैं राजर्षि ये खटवांग जी। इसीलिए कहते हैं कि इंद्र तुम जो भी मांगने को कह रहे हो, यथेशु माया रचितेशु संग, तुम स्वर्ग की जो भी वस्तु है या इस भौतिक संसार की जो भी वस्तु देने का हमें ऑफर कर रहे हो, ये सब माया रचितेशु, भगवान की त्रिगुणात्म ही बहुरंगा शक्ति माया के द्वारा बनाया हुआ है और इसीलिए असत है। क्या है ये सारी वस्तुएं? असत है। असत का तात्पर्य है भविष्य में नहीं रहेगी, अशाश्वत है, नश्वर है। यथा दृष्टम तथा नष्टम, इस विश्व ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं या व्यक्ति के विषय में आप सुनते हो या देखते हो वो एक दिन नष्ट होने वाली है। मैन्युफैक्चर डेट के साथ एक्सपायरी डेट लगा हुआ है, कहीं छपा नहीं होता लेकिन है, चाहे वो व्यक्ति का शरीर हो, चाहे बिल्डिंग हो या गाड़ी, कुछ भी हो, असत। भक्तों के लिए भी ये विचारणीय शिक्षा है जीवन में कि माया के किसी भी पदार्थ से हमें आसक्ति नहीं रखना है। ये आसक्ति है वो साधुओं के प्रति करना है, कपिल देव के माता के उद्गार के अनुसार, सएव साधुष मोक्ष द्वार अपावृतम, नहीं तो इसको अजर पाश कहा है। कभी क्षीण न होने वाला, जीर्ण न होने वाला ऐसा अटूट बंधन है ये माया का, आसक्ति का, जो बाहर से दिखता नहीं है। हृदय ग्रंथि, हृदय के अंदर अज्ञान की ऐसी एक गांठ है कि अहम मम, ये मैं हूं और ये मेरा, इसको काटना बड़ा दुष्कर है, दिखता ही नहीं, काटे कैसे। सहज बद्ध जीव का, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी यहां अपने तात्पर्य में जिक्र करते हैं कि उस साधक को चाहिए कि माया के इन वस्तुओं के प्रति विरक्त हो जाए। अब संग तो करना पड़ेगा और विरक्ति होगा नहीं, इसलिए रूप गोस्वामी की उपदेशामृत की अमृत में शिक्षा को स्मरण दिलाते हैं भक्ति वेदांत स्वामी, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते। इच्छा शून्य होना ये बद्ध जीव के लिए मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। विहाय कामान, जो गीता में कहा गया है कि सभी कामनाओं से मुक्त होना चाहिए, कैसे है? बद्ध जीव को एक माया के द्वारा मन दिया गया है और मन का काम है विचारना, वो इच्छा करना, वो इच्छा करेगा ही, थिंकिंग डिजायर, ये मन का अपना स्वरूप है, स्वभाव है। तब विहाय कामान, सभी इच्छाओं को छोड़ना है और ये हो नहीं सकता। तो भक्ति वेदांत स्वामी ने बड़ा सुंदर तात्पर्य वहां पर लिखा है भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में, विहाय कामान पुमान चरत निष्प्रिय, उस श्लोक में, कि भगवान की भक्ति के अनुकूल इच्छा करना ये इच्छा शून्यता, कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ये इच्छा शून्यता है। इसी का सार है निर्बंध कृष्ण संबंध। हमारे आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने, नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर अर्थ दिया है इन गीता और भागवत के श्लोका अर्थों का सार अपने भजन बंगला पदों में, कृष्ण प्रीति अर्थ भोग त्याग। यही सनातन गोस्वामी ने भी शरणागति का लक्षण बताते हुए, आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से मर्जन, जो भक्ति के कृष्ण प्रीति के अनुकूल हो उसको करना चाहिए और प्रतिकूल है उसको वर त्याग देना चाहिए, शरणागत साधक के लिए, वैष्णव के लिए। तो प्रभुपाद जी यहां याद करा रहे हैं कि निर्बंध, जो भी वस्तु ये सब माया की है, लेकिन फिर भी माया भी तो भगवान की शक्ति है। इसीलिए इन भौतिक पदार्थों को भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल न करते हुए भगवान की सेवा में लगाया जाए तो ये युक्त वैराग्य है। लेकिन इसकी भी अपने आप में गुरु शास्त्र साधु के अनुसार सीमा है। अपनी बुद्धि से मैं युक्त वैराग्य हूं, युक्त वैराग्य, ऐसे ही करते करते भोग में फंस जाएंगे। ऐसा भी होता है बद्ध जीव के साथ। इसीलिए हमेशा शास्त्र और साधु गुरु के आज्ञानुवचन के नियंत्रण में रहकर बड़ी बुद्धिमता से वैष्णव को चाहिए कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहें। तो माया रतेषु, त्रिगुणात्मयी माया के ये तीन गुण, सत्व रजस तमस, काम क्रोध लोभ आदि जिनके विकार है, आलस निद्रा आदि, और उसकी द्वारा रचा हुआ ये समस्त वैभव जगत, ये भौतिक जगत का वैभव विलास जो भी कहिए, तस्य संग, उसमें संग, उसमें आसक्ति जो है, और वो ये पूरा जगत की उपमा किसमें दी गई है, गुणेशु गंधर्व पुरमेशु, आकाश में जो कुछ दिखता है वो गंधर्व नगर कहा जाता है, जो मिथ्या धारणा है, भ्रम है। तेजो वारिम विदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, प्रथम श्लोक का बात है भागवत का। जो जल में प्रकाश बुद्धि या प्रकाश में जल बुद्धि, तेजो वारी मृदा, मिट्टी में जल, जल में मिट्टी, ये जो विनियोग है वो मृषा एवं, एक अर्थ अमृषा भी कहा गया है हमारे आचार्य के द्वारा, लेकिन मृषा अर्थ जो वास्तविक श्लोक है शब्द में मिथ्या है। मृषा मतलब नश्वर है, भ्रम है। भ्रम का तात्पर्य है भविष्य में न रहेगी न भूतकाल में था, वर्तमान में दिख रहा है, एक स्वप्नवत है। तो आकाश में जो कुछ भ्रांत दिखता है, नगर जैसा, भवन जैसा, उसको गंधर्वपुर कहते हैं। हमने तो नहीं देखा, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में जिक्र करते हैं कि हवाई जहाज में जब हम यात्रा करते हैं तो कुछ नीचे देखने पर या आकाश में दिखता है ऐसा आकृति, जो वास्तव में होता नहीं, भ्रम है एक। ऐसे ही नश्वर मिथ्या है, इसमें इसमें आसक्ति को त्यागना चाहिए। इस जगत के, पूरे जगत को गंधर्वपुर, ऐसे गंधर्व लोक एक जाति है जो आकाश में रहती है, और उनके वास्तविक अपने अपने महल भवन नगर होते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए अप्राप्य है, निष्क्रिय है, तो दिखता है। इसी प्रकार का एक शब्द है, हम सुनते हैं शास्त्रों में संतों से, आकाश पुष्प, जो आकाश में दिखता है पुष्प के समय, होता नहीं है, मिथ्या है, नश्वर है, यही तात्पर्य है। तो जीव भगवान श्री कृष्ण का अविनाशी का वो अंश है, सच्चिदानंद स्वरूपमय है, लेकिन इस जड़ जगत की वस्तुओं के प्रति उनकी आसक्ति, यही दुख का जीव के लिए महाकारण है। क्योंकि चिन्मय सनातन अंश, चिन्मय अंश नश्वर पदार्थ के संग से सुखी हो नहीं सकता, और उस नश्वर पदार्थ को इकट्ठा करने की या उनसे संग से सुख की वो आशा करता है, यही उनका दुर्भाग्य जीव का। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारे पास ये वस्तु नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हाय रे हमारा भाग्य कितना कमजोर है, हम दुर्भाग्यशाली है कि हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ये दुर्भाग्यता नहीं है। ऐसी नश्वर वस्तुओं के प्रति हम आसक्ति लगाए बैठे हैं, जो नष्ट होने वाली है, जो दुख देने वाली है, और उनकी चाह में उनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन का कीमती समय व्यय कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य। तस्येव हेतो प्रयतेत कोविदो, व्यास जी ने, व्यास पूर्णिमा है ना, नारद जी को बद्री का आश्रम में यही उपदेश दिया नारद जी ने व्यास जी को, कि जो कोविद कवि है, बुद्धिमान व्यक्ति है, जो सार असार को, सत असत को, हंस जैसे क्षीर निर्बुद्धि को, हंस जैसी जिनकी मति है, ऐसा साधक, ऐसा वैष्णव विचार करेगा, न भ्रमता उपरी अध, इस त्रिभुवन में 14 ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं है वो असत है, दुखदाई है, नश्वर है, उसकी प्राप्ति के लिए वो प्रयास नहीं करता। जो वस्तु कल नष्ट होने वाली है और दुख देने वाली है उसको क्यों प्राप्त किया जाए और क्यों उनकी आशा करें? ये मूर्खता है। काले न सर्वत्र गभीर रमसा, ऐसे तो उसको सुख दुख के लिए वो कहे कि जैसे दुख की आशा न करने पर भी आता है ऐसे न आशा करने पर भी सुख आएगा, जैसे प्रहलाद जी सातवें स्कंद में कहते हैं असुर बालकों को। लेकिन ये बात वैष्णव के लिए बड़ी उत्साहवर्धक है कि त्रस्तस्य हेतु प्रयतेत कोविदो, इस विश्व ब्रह्मांड की 14 भुवन की कोई भी वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें आशा नहीं करनी है, न उनसे आसक्ति करना, न चाह करनी है। किसके लिए चाह करना है? कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण प्रीति के लिए। क्योंकि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पिधन्या, इस त्रिभुवन में सार वस्तु क्या है? भक्ति। निवसति हृदि में श्याम श्रीहरेर भक्ति एका, भगवान श्री हरि के चरणों की प्रेमा भक्ति है वो सबसे बड़ा धन है। हरि अपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान श्री हरि भी निज लोकम वैकुंठम अपि त्याज्य, वैकुंठ को त्याग कर भी भगवान श्री हरि भी जिस भक्त के हृदय में भक्ति है उस भक्ति प्रेम के वशीभूत होकर जो विष्णु पूरे विश्व को वश में रखते हैं, वे उस भक्त जिसके हृदय में भक्ति है वे विष्णु विश्वम भर उसके वश में हो जाते हैं। भक्ति सूत्रोक्त नब्ध भक्ति के नाते से बंध जाते हैं, भक्ति वश ही पुरुष हो जाता है। 14 ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धन भक्ति है और उसको प्राप्त करने के लिए एक साधक को वैष्णव को चाह करनी चाहिए, भौतिक मिथ्या वस्तुओं के लिए नहीं। ये है स्थिर मति, इसको कहते हैं स्थिति प्रज्ञ गीता के अनुसार। जिसकी मति भगवान में लगी है, भगवत विषय में लगी है वही। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, हमारे भक्तिनो ठाकुर ने हरिनाम को कहा नाम बिना किछु नाही 14 भुवन माझे, 14 ब्रह्मांड में नाम के अलावा कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख से कीर्तनीय सदाहरी श्लोक के भावार्थ में चैतन्य चरितामृत 20वें अध्याय में तात्पर्य देते हुए स्पष्ट कहते हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। कृष्ण प्रेम जिसके पास नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब है, दरिद्र है। तो दास करी मोवेतन देह प्रेम धन, इसलिए है कृष्ण हे राधा रानी अपना दास समझकर प्रेम धन की प्राप्ति कराइए हमको, ये बोल रहे हैं। और कौन इसका अधिकारी है? देखिए कृष्ण प्रेम धन बहुत ऊंची वस्तु है, हम सब वैष्णव शास्त्र और सत्संग से इसको समझते हैं, लेकिन साथ साथ में भौतिक विषयों के प्रति जो हमारा ये अटैचमेंट है, अनुरक्ति है, आसक्ति है, तो हमें भक्ति सुख लेने नहीं देता। भक्ति भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा, ये भुक्ति की संसार के भोग की जो स्प्रिहा इच्छा, या मुक्ति की भी स्प्रिहा पिचासी रूप गोस्वामी उसको कहते हैं, एक चुड़ैल है जो हमारे हृदय में बैठी है। तो तावत भक्ति सुख स्यात् कथम उद्भवेत् तो भवेत्, जब भुक्ति की और मुक्ति की इच्छा रूपी चुड़ैल बैठी है हृदय में तब तक भक्ति का सुख, फिर रटते रह जाएंगे आनंदम बुद्धि वर्धनम, पथ पथ पर आनंद की वृद्धि होती है। किसको होती है? होती ही नहीं हमको तो, आनंद की कंटाला आता है कब 16 पत्थर खत्म हो तो काम दूसरा करे, ये दशा हम लोग की है। कभी कभी होता है शुद्ध भक्तों के संग में हरि कथा सुन लेने पर उत्साह साधना में आता है, और इससे विरत होने पर वैष्णव संग से अलग होने पर तो हम सब जानते हैं अपनी स्थिति क्या हो जाती है, माया रचितेशु गुणेशु संग के कारण देखा गया है। इसीलिए गोदावरी के तट पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु महान भक्तराज श्री रामानंद राय से मिलते हैं, तो बड़ा सुंदर बात संवाद जो वहां पर होता है। रामानंद राय उस गोदावरी देखिल प्रभु हैल यमुना स्मरण, यमुना का स्मरण हो जाता है चैतन्य महाप्रभु को, और उसमें स्नान करके थोड़ी दूर पर घाट पर विराजते हैं तो पालकी में सवार होकर रामानंद राय आते हैं वहां पर। और रामानंद राय जब देखते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, कबीराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, शत सूर्य सम देह अरुण वसन सुवलित प्रकांड देह कमल लोचन। कैसे थे चैतन्य महाप्रभु? कोटि सूर्य के कांति को फीकी करने वाले, झांकी करने वाले हैं, ऐसा प्रकांड देह, सुंदर सुवलित और कमल जैसी आंखें और अरुण वसन, सन्यासी वेश में थे, लाल वस्त्र धारण किए थे। महाप्रभु के तेज प्रकाश को देखकर रामानंद राय समझ गए महाप्रभु के स्वभाव स्वरूप को। बड़ा सुंदर मिलन है। और पूछा गया, श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवे रहय सार। श्रेय यह श्रेय स्यात, अर्जुन कहता है गीता में, मेरे लिए सबसे श्रेय अच्छा है वो बताओ, जीव का सबसे बड़ा श्रेय क्या है? रामानंद राय कहते, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नाही यार। भगवान श्री हरि विष्णु के वैष्णव भक्तों के संग के अलावा और कोई श्रेय नहीं है जीव का, सार नहीं है, मंगल नहीं है, स्वार्थ नहीं है, अभिष्ट नहीं है। और से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, अभी जो गा रहे थे प्रभु जी वैष्णव आचार्य जो नरोत्तम दास ठाकुर के भाव को, कि महाप्रभु के प्रेमी वैष्णव का संग तो नहीं मिला और उसके संग करने वाले का भी संग नहीं मिला। से सब संगीरा संगे जे कैलो विला, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दा, कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनात। सनातनम तम प्रभुमाश्रयामि कृपां बुद्धिस्य पर दुख दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद श्री सनातन गोस्वामी जो वैराग्य की प्रत्यक्ष साक्षात मूर्ति थे, बड़े मंत्री पद को त्याग दिया, वैष्णव लोग बार बार उनके चरित्र का रसास्वादन किए हैं सनातन गोस्वामी का। ये जो वैराग्य है भौतिक विषयों के प्रति, धन पद जन के प्रति, महाप्रभु जिसको सिखाने आए थे, जो महाप्रभु का अभिष्ट वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, जो यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने डाला है, खटवान की जैसी मति थी कि संसार के सौती वस्तु हमको नहीं चाहिए, माया के द्वारा कोई भी उपज जो पदार्थ है उसमें कोई रुचि नहीं, उसके संग आसक्ति को त्याग कर हम तहम प्रपद्ये भक्ति भावे न, कैसे हो सकता है भौतिक विषयों के प्रति वैराग्य? कब होगा, कहां से होगा? वैष्णवों के संग से, भगवान की भक्ति से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, इसका सार यही है कि साधुओं का संग करने पर सत्य की बुद्धि भान होगा, उस समय हे पदार्थों में अपने आप विरक्ति हो जाती है। भक्ति परेशानो भावो विरक्ति अन्यत्र च त्रिय काल, नव योगेंद्रों का वाक्य है, अपने आप होगा ये। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम, भागवत द्वितीय अध्याय प्रथम स्कंध का शुरुआत ही वहां से की है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है, कोई भगवान वासुदेव की भक्ति योग में प्रयोजित होता है तो जनयत्यासु वैराग्य, उसको अपने आप वैराग्य होगा। लेकिन विशेषकर आज व्यास पूर्णिमा है और हमारे महाप्रभु के प्रिय पार्षद जिनके देह को महाप्रभु ने अपना धन संपत्ति कहा है, सनातन तुम्हारा ये जो शरीर है वो मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, महाप्रभु ने जिसके देह को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी माना है, वे सनातन जी आज के दिन भगवत लीला में प्रवेश किए, उसका तिरुभाव तिथि है। ये जो प्रेम की बात हम कर रहे हैं उसको लाने वाले यही आचार्य है, गौड़ी आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों के अनुसार जे अनिलो प्रेम धन, ये जो प्रेम धन है पृथ्वी पर जे अनिलो जो लाए हैं, क्यों कह सके करुणा प्रचुर, किस के क्या जीव का कोई सौभाग्य उदित हो गया, सुकृति बढ़ गया, ये सब साइड बात है। बस वैष्णव आचार्यों की करुणा है जीवों के प्रति, और वो करुणा सीमित नहीं है, प्रचुर बहुत है। और अपने कृपाम बुद्धि ये पर दुख दुखी, सनातन गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में लिखा है कि जो कृपा के समुद्र है और वैष्णव पर दुखे दुखी, और जीव का दुख क्या है, कृष्ण बहिर्मुक्ता, संसारिक आसक्ति का कारण ही कृष्ण बहिर्मुक्ता, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा कर, अतएव माया, इसलिए ये माया रचित सुगुण आसक्ति हो जाता है जीव। तो जीव का दुख का कारण है कृष्ण बहिर्मुक्ता, और इसी कृष्ण प्रेम जो कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण सब दिए, क्योंकि करुणा है। संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम, संसारी के प्रति करुणा करके दिए सुख जी, महाभागवत ये पुराण महापुराण। तो हम भक्त लोग इस पर विचार समझना चाहिए कि करुणा प्रचुर है, इसीलिए प्रेम धन को लाए हैं। नरोत्तम जाकुर का शब्द भाव बड़ा गहरा है, ऐसे कहां चले गए वे लोग जो लाए हैं, और उसका दर्शन नहीं हो रहा है, उनका संग नहीं मिल रहा है, तो ये जीवन उसको भार लग रहा है। पाषाणे कोटि बोमा था, पत्थर से अपने सिर को फोड़ डालो, अनले पेशी वो अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, कृष्ण प्रेमी वैष्णवों के विरह में जिया नहीं जाता। अब हम लोग की समझ में ये कब आए, ये तो बहुत ऊंच, थोड़ा लगता है कि लाखों किलोमीटर दूर है इससे हम लोग, इस भाव से या इस वस्तु से। लेकिन इसी आचार्यों के पदों को गाया जाए, सुना जाए, इसी वैष्णव के चरित्रों का मंथन किया जाए, तो उनकी भक्ति भावना हम में ट्रांसफर होगी, और हमारा हृदय भी इन विषयों से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हो सकता है। यही सरल सोपान, सरल उपाय, इससे सरल उपाय और कौन सा। इसीलिए भागवत की महिमा है कि जिसमें भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों की और भक्ति की महिमा जिस ग्रंथ में दी गई, और इसीलिए जन के लाखों करोड़ों जन के हृदय को पवित्र करता है भागवत का प्रसंग। त्रिगुणात्मक शब्द है। तो श्री सनातन गोस्वामी का भी कुछ स्मरण करते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम। ये जो पुराण पुरुष है ईश्वर परम कृष्ण, वे शिक्षार्थ, एक शिक्षा देने के लिए, क्या अपनी आचरी भक्ति जीवे, भक्ति की शिक्षा, शिक्षा से हम अर्थ लेते हैं भक्ति शिक्षा, लेकिन भक्तों में कृष्ण प्रेम भक्ति के पथ पर जो है उसमें, उस भक्त में एक एक वस्तु होनी चाहिए, वो है वैराग्य, वैराग्य विद्या। कई प्रकार वैराग्य विद्या और निज अपने ही भक्ति का ये योग, भक्ति ही वास्तव में योग है जो कृष्ण से जुड़ाने वाली साधना, उसी की शिक्षा को स्वयं आचरण करे 24 वर्ष में, अपनी ही स्वरूपा शक्ति विष्णु प्रिया का त्याग करके संन्यास धर्म का आचरण स्वयं महाप्रभु किए, और वो भी अपराधी जीवों के उद्धार के लिए। संन्यास का कारण भी आप चैतन्य भागवत में पढ़िए, तो जो जीव महाप्रभु के प्रति अपराध करते थे उनका उद्धार करने के लिए कि भाई संन्यास वेश धारण कर लूंगा, तो सन्यासी समझ कर ये लोग हमको प्रणाम करेंगे तो भी इनका मुक्ति हो जाएगा। जो उनके प्रति अपशब्द बोल रहे थे उनके उद्धार की महाप्रभु सोच रहे हैं। और आस्वादन करना था अतरंग निज गुड कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन, रामानंद राय ने उसी गोदारी तट पर कहा कि तुम्हारे अतरंग कारण तो प्रेम आस्वादन, लेकिन आनुषंगिक त्रिभुवन कैलदन, लेकिन दूसरा जो हरिनाम प्रचार उससे भी त्रिभुवन को आपने धन्य कर दिया, लेकिन अतरंग कारण तो आपका प्रेमास्वादन था राधा भाव में जो आपने निभाया पूरी में, भक्तों को अतरंग भक्तों को प्रस्तुत किया। तो वैराग्य विद्या हम स्मरण कराते हैं आप वैष्णवों को, एक बड़ा सुंदर प्यार चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रसंग का, कि रघुनाथ दास गोस्वामी अप्सरा जैसे ऐश्वर्य और इंद्र जैसा सब त्याग कर भागे पूरी, तब कविराज जी ने वहां लिखा है महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में एक प्रधान वस्तु मुख्य वस्तु होती है और वो क्या होती है? वैराग्य विषयों के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति। ताहा देखी प्रीत है गौर भगवान, और चैतन्य महाप्रभु उनको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई भक्त वैरागी होकर, अब इसका प्रसंग हम सनातन गोस्वामी के चरित्र में देखते हैं। जब सनातन गोस्वामी भागे उस कारागृह से, वो रूप गोस्वामी के द्वारा रखा हुआ संपत्ति उसको दिया, उस जेलर को, शेख हबू उसका कुछ नाम था, ऐसे भक्त कहते हैं जो मुसलमान जनरल था, उसको कुछ लांच दिया रूप गोस्वामी ने रखा था वो, और बताया कि फिर भी हमको मारेगा राजा, तो कहा कि बता देना भाग गया मर गया, गंगा से गया सोच क्रिया के लिए, आया ही नहीं और मैं आने वाला हूं नहीं, चिंता करो मत तुम। तो पैसे की लालच में और सनातन गोस्वामी के कुछ प्रभाव शक्ति सामर्थ हो ही गया वो। तो महाप्रभु से मिलन के लिए जब सनातन गोस्वामी भागे और काशी में मिलन हुआ ना, वाराणसी में चंद्रशेखर आचार्य के गृह में, उसके पूर्व बीच में गंगा और गंडकी का जहां मिलन है, हाजीपुर गांव, जहां तपन मिश्र रहते थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, हमारे रघुनाथ भट्ट के पिताजी छह गोस्वामियों में जो तपन मिश्र जो सनातन गोस्वामी के कुछ जीजा लगते थे दूर के, तपन मिश्र, तो सनातन गोस्वामी केवल एक 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 वस्त्र धारण किए थे और बड़ी जोर की ठंडी थी और भागते दौड़ते उसको जाना था। तो तपन मिश्र के साथ जब मिलन हुआ और सनातन गोस्वामी ने सारा कथा सुनाया, तो तपन मिश्र उस हुसैन शाह के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदते थे। तपन मिश्र घोड़े की उसको पहचान थी, कौन सा घोड़ा कितने का है, कितना अच्छा है, तो उसको वो दिया था वहीवट पूरा। तो थोड़े थोड़े धनी थे, समर्थ थे। तो बोले सनातन गोस्वामी महाप्रभु के मिलन के लिए भाग रहे हैं, मिलने की हृदय में तीव्र इच्छा है और उसे कुछ सुहाता नहीं है। हमारे इसी चैतन्य चंद्रोदय नाटक का जो ये श्लोक यहां पर है वैराग्य विद्या, उसी अंतर्गत एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक प्रभुपाद जी ने अम्बरीश चरित्र में तात्पर्य में डाला है, कैवल्य नरकायते। कैवल्य जो मुक्ति है वो नरक जैसा लगता है, आकाश त्रिदश पुष्पायते, ये तीनों लोगों का सुख उसको आकाश के पुष्प के समान है। विधि महेंद्र कीटायते, ये विधि और महेंद्र का ब्रह्मा का पद उसे कीड़े जैसा लगता है। और क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियों में विषय वासना नहीं रही, जैसे सर्प की दांत निकाल दो तो वो खिलौना है। तो कदुर्दे कार पर पटली जो सर्प इंद्रिय वृत्ति है उस साधक के लिए कुछ नहीं। गौर कारुण्य कटाक्ष, जिसके चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शुद्ध प्रेमा भक्ति का एक बिंदु मिल चुका है, उनके लिए यह दशा हो जाती है। रघुनाथ दास विषय में भी लिखा है ना कि कृष्ण पाद पद्म गंध यार जेई पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तार नहीं भाए। कृष्ण चरण प्रेम भक्ति की जिनको थोड़ा सा भी आस्वादन मिला है तो त्रिभुवन का ये ब्रह्मलोक का सुख भी उसको सुहाता नहीं है। कृष्ण पाद पद्म गंध, हमारे गुरु जी को भी कृष्ण पाद कहते हैं। पद्म गंध जेई पाए, ब्रह्म भागवत में मति लग जाती है तो आर नहीं भाई, फिर उसको कुछ सुहाता नहीं है। यह स्वाभाविक है, कृष्ण प्रेम का यह स्वरूप है। तो महाप्रभु के पार्षद सनातन गोस्वामी तो साक्षात उसके लिए क्या है सुख भौतिक विषय, वो तो हुसैन शाह के मंत्री थे ही थे, उस पद को भी उन्होंने त्याग दिया है, तो ये क्या है। लेकिन संबंध के नाते और कुछ वैष्णवता को छोड़िए, मानवता के नाते भी फर्ज बनता है। तपन मिश्र धनी थे, एक बड़ा ऊनी कंबल होता है ना, हम हरिद्वार से लाते हैं, अभी सब गृहस्थ लोग यही ओढ़ते पहनते हैं, वो मक होता है ना रेशम का कंबल, दिया कि भाई ठंड इतनी है और तुमको दूर जाना है तो कंबल ले लिए, ठीक है। उसी कंबल को ओढ़े ओढ़े तो आए थे यहां पर, लेकिन बड़ा सुंदर मिलन है। महाप्रभु अंतर्यामी, अपने पार्षदों का चिंतन स्मरण ही जिनका धन है। सनातन गोस्वामी को देखते ही चंद्रशेखर से कहा कि बाहर एक वैष्णव है, लेकिन देखे कोई नहीं है। वो समझ रहे थे कि भाई सीखा तिलक तुलसी होगा तो यही वैष्णव पहचान है, लेकिन वो तो भागते हुए महीनों से आ रहे थे, तो दाढ़ी बढ़ गया था और फकीर वेश हो गया था, तो पहचान नहीं पाए। तो महाप्रभु स्वयं खड़े हुए और गए बाहर, और सनातन गोस्वामी को अखबार में आलिंगन में भरने के लिए उमट गए, दौड़ पड़े उत्साहपूर्वक चैतन्य महाप्रभु, और सनातन गोस्वामी पीछे हट रहे कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, म्लेच्छ जाति म्लेच्छों की मैं नौकरी किया हूं, नीच हूं शूद्र हूं, मेरे मैं अस्पृश्य हूं, आप मुझे मत छुइए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देव मुनि पवित्र है, तुमको स्पर्श करके तो देवता भी पवित्र हो जाता है, मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं सनातन। ऐसे कहते ही अखबार में भर लिए, दौड़कर पकड़ लिए महाप्रभु को। बड़ा सुंदर मिलन है। उसके पहले रामकेली में मिलन हो चुका था, लेकिन वहां जो प्रेम, उससे ये प्रेम का दरिया बढ़ गया था। जैसे कहा जाए कि प्रेम एक समुद्र है, तो रामकेली में मिलन जो है वो प्रेम का समुद्र है, लेकिन पूर्णिमा के दिन जब समुद्र में बाढ़ आती है, ऐसे ही यहां वाराणसी में जो मिलन है सनातन और चैतन्य का, वो प्रेम की एक बाढ़ आ गई थी, क्योंकि वहां तो उसको भेजा था वापस शिक्षा देकर, नवसंग रसायनम, कैसे रहेंगे आपके विरह में, तो रहने की कला तो बताई थी महाप्रभु ने, बोले पत्र में ही तुमको बता दिया, दीक्षा तो उसी समय हो गई, तो ना आज से तुम्हारा नाम रूप सनातन है। और वो दोनों भाई दूर से प्रणाम करते हुए पास जाने से भी डर रहे थे, नवाब हुसैन शाह के मंत्री पद में ही प्रणाम कर रहे, नित्यानंद और हरिदास प्रभु उनके साथ में थे, तो महाप्रभु से कहे कि ये दोनों तुमको प्रणाम कर रहे हैं। तब महाप्रभु ने उनको देखा और वहां पर मिलन हुआ, तो वही दीक्षा हो गई, रूप सनातन नाम हो गया, अतरंग पार्षद है, पहले की पहचान है महाप्रभु के साथ। लेकिन वहां पर भी इन लोग का दैन्य है अद्भुत। महाप्रभु ने एक एक भक्त के द्वारा एक एक वस्तु सिखाया है। भक्ति रत्नाकर में लिखा है, रूप सनातेर द्वारा दैन्य र प्रकाश। वैष्णव में जो एक एक रत्न होता है, एक एक दूसरी संपत्ति होती है, और वो है दैन्य, वैराग्य के साथ दैन्य, अहंकार नहीं, अहंकार का बिल्कुल विरुद्ध विरोध है दैन्य, और वो रूप सनातन के द्वारा, और सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, और सनातन गोस्वामी के द्वारा भक्ति जो सिद्धांत है उसको महाप्रभु ने ग्रंथों के द्वारा, दो काम सनातन गोस्वामी से, जैसे हरिदास द्वारा नामेरा प्रकाश नाम का प्रकाश कराया, ऐसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के द्वारा दैन्य, और विशेष सनातन गोस्वामी के द्वारा भक्ति सिद्धांत ग्रंथों के द्वारा वैष्णव जगत को दिया सनातन गोस्वामी के द्वारा। और दैन्य भी अद्भुत है सनातन जी, अग्रज है रूप गोस्वामी के, मिलन रूप गोस्वामी का महाप्रभु से पहले हुआ, और इसीलिए भक्ति राज की ये महिमा है कि भगवान से जिसका मिलन भक्ति पहले होता है वो श्रेष्ठ अग्र होता है। लेकिन लीला में और नित्य लीला में तो रूप मंजरी श्रेष्ठ है रूप गोस्वामी, और उसी के अंतर्गत रति मंजरी है ये सनातन गोस्वामी। कुछ भक्त गौरदेशण के अनुसार लवंग मंजरी भी कहते हैं इनको, सनातन गोस्वामी को, लेकिन रति मंजरी रूप गोस्वामी के अंतर्गत है, और ये रति मंजरी है स्वरूप से। लेकिन लीला में तो अग्रज बन के आए हैं, रूपम सा अग्रजम, अभी जो हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, और इसीलिए रूप गोस्वामी भी बड़े आदर प्रेम से इनके साथ व्यवहार, और पूरा ब्रज ये तो श्रीनिवास आचार्य ने गाया ही है अपने शब्दों में, धीरा धीर जन प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो, निर्मत्सर। ऐसे सनातन गोस्वामी से जो ये मिलन है, और दैन्य भी वहां अद्भुत प्रकाशित किया है रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, राम के लिए में प्रथम मिलन में, आपने अयोग्य देखी मन ने पाऊशो, मैं इतना अयोग्य हूं कि मैं आपको क्या कहूं क्या मिलूं, तथापि अपना गुण उपजाए लोभ, लेकिन आपकी करुणा है कि मेरे मन में लोभ होता है कि आपके कुछ निवेदन करें। दैन्य वल्लभ भट्ट के यहां जब गए इसी वाराणसी में अडाइल गांव में रूप गोस्वामी, तब भी वहां दैन्य प्रकाशित हुआ है रूप गोस्वामी का। ब्रज में कहीं जगह कहीं ऐसी लीलाएं है, साक्षात राधा रानी जिनकी सेवा के लिए आए, तो यही सनातन जी गए रूप जी को मिलने कदम टेर पर नंदगांव के यहां, तो राधा रानी ने खीर बनाया, आप सबने लीला सुनी है, किसके लिए? राधा रानी ने स्वयं अपने श्री हस्त कमलों से स्वीट राइस बनाया, किसके लिए? श्री सनातन गोस्वामी के लिए। कितने ऊंचे पार्षद आप बिचारिये राधा रानी जी, और फिर भी ये दैन्यवश कह रहे कि तुमने ऐसी इच्छा क्यों की, डांटे रूप गोस्वामी को कि तुमने ऐसी इच्छा क्यों की कि स्त्री जी को प्रिया जी को आना पड़ा। हम लोगों में से कोई होता तो वो सब प्रचार करता, मीडिया बुलाता कि आप सुनिए सब लोग हमारे लिए हुआ है कोई सबको पता चलना चाहिए डांटने की कहां बात है, सौभाग्य अनुभव करते होंगे। देखिए ये बेस्ट, कई बार राधा रानी को क्योंकि तो नित्य प्रिया की सखी है ये लोग, उनके लिए क्या कहना। हम भक्ति वेदांत स्वामी के चरण पाद पद्मों में हाँ युगो युगो तक ऋणी रहेंगे कि इन्होंने इस्कान बनाकर हमको इन आचार्यों से जोड़ दिया हाँ, जो कृष्ण के प्रेमी है हाँ। सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसी उस उपलब्धि को प्राप्त करके हम लोग है कि उसी भक्ति रथ समुद्र में हमको डाला है भक्ति वेदांत स्वामी ने, और हम है कि गटर की ओर देख रहे हैं अभी विषयों में इसी शरीरा संबंध में और शरीर की तृप्ति इंद्रिय तृप्ति में, ये दुर्भाग्य है। निर्येपि निर्णाम, ध्रुव महाराज कहते हैं कि नरक निवासी को भी बिना मांगे जो सुख मिलता है, अर्चन्ति कल्पगत रूपोप भोग्यम, भगवान के चरण कमल को कल्प वृक्ष कहा जाता है, इसकी अर्चना करते हुए भी वो जो नरकगामी जीवों के लिए जो विषय सुख है वो मांग रहे तो देंगे भगवान के चरण कमल तो सत्यम अर्थितो निर्णाम, इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम, देवताओं ने गाया है कि जो भी इच्छा जीव करेगा देगा, लेकिन महाप्रभु सब अवतार गोरा अवतार, जो चैतन्य अवतार है अवतार सार गोरा अवतार है, ये जो गोरा अवतार है वो देने वाला नहीं है। आप बोले विषय सुख मांगे देंगे, विषय कहने दीबो विषय थोड़ी दूंगा मैं, अमृत छाड़ी विष मांगे तुम वो मूर्ख है, हम तो मूर्ख है नहीं, महाप्रभु नहीं देंगे, महाप्रभु के पार्षद भी नहीं देते, वो प्रेम धन लुटाने के लिए आए हैं करुणा के कारण, और इस संप्रदाय से इस संतों से हूं। हमारे गुरु जी कथा में सुनाते हैं कि कथा कहते हुए वो दैन्य व्यक्त करते हैं कि हम जो भी सुना रहे हैं हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ है वो सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी हाँ विश्वनाथ इन आचार्यों का है, तो इन्हीं का उचिष्ट जो परंपरा से झरता बहता आता उसका कुछ आस्वादन किया है वो वैष्णव में बांट रहे हैं बस। तो हम लोग इतने धनी है, जैसे होता है ना कि करोड़पति के यहां जन्म ले ले तो उनको कमाने धमाने की चिंता नहीं रहती है ट्रेन पकड़ने की, ऐसे ही प्रभुपाद जी ने और हमारे गुरु उनके शिष्य प्रशिष्य ने हमें इन इन प्रेम खजाना के साथ जोड़ दिया है। होते ना हमारे दादा बहुत धनी, उनकी संपत्ति से चलता है सब कुछ, अभी ऐसे ही हमारे दादा परदादा की कथा हो रही है जो इतने आगे है भक्ति राज्य में प्रेम राज्य में, भगवान जिसको अपना धन मानते हैं, भगवान जिनके स्पर्श के लिए जिनके संग के लिए तरसते हैं, ये मिलन में यही दिखाया गया। चैतन्य महाप्रभु अखबार में भरने के लिए महासुख आनंद अनुभव करते हुए अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हुए कि सनातन तुम्हारा दर्शन हो गया, तुम्हारा स्पर्श हो गया, कितनी ऊंची बात है। और वे सनातन गोस्वामी को जब बड़ा सुंदर मिलन है कि आमी के ने अमर झारता पत्रई, और फिर शिक्षा दी गई साध्य साधन तत्व की, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला विश्व अध्याय भक्तों को पढ़ना चाहिए, 20 21 22 19 से लेकर 22 चार अध्याय सनातन शिक्षा है, जिसमें सारा तत्व निरूपण किया है जीव के स्वरूप से लेकर जीवेर ततिष्ठा शक्ति भेदा भेद प्रकाश, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान के अवतार क्या, काल कर्म से क्या, जो भी अवस्था है सरल रूप में महाप्रभु ने और आत्मा रामश्च मुनयो की 61 अर्थ में व्याख्या की सनातन गोस्वामी के समक्ष चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर। तो बड़ा लंबा सोना संवाद है, लेकिन हम थोड़ी सी बात समय अभाव हमारे लिए जो यहां पर इस श्लोक और इस तात्पर्य से मिली जुली सनातन कथा, सनातन चरित्र का जो एक शिक्षात्मक प्रेरणादायक भक्तिवर्तक प्रसंग जिसको हम सुन रहे हैं श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर के अंदर में भेज दिया इनको। हाँ नहीं, कौन था वहां जो पूरा, क्योंकि ये सब कराना है अभी वैष्णव है स्वरूप दामोदर ने, हमको स्मरण नहीं है क्योंकि हम पढ़े नहीं है बहुत समय पहले, सुने अभी कोई समय नहीं था। और सब कुछ हो गया, गंगा तट पर जाते थे, दर्शन के लिए आते थे, महाप्रभु से मिलन दर्शन सब कुछ कुछ दिनों तक चला, लेकिन महाप्रभु कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन कंबल पर दृष्टि जाती थी जो तपन मिश्र से लेकर आए थे, ठंड थी ही और कंथा यही तो था, एक वैरागी गो का ये चिन्ह है ना, कौपिन कंथा आश्रितो त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत। तूर्णता से, शीघ्रता से, हाँ बड़े बड़े मंत्री संतरी पद को आज कितनी झगड़ा होता है इस कुर्सी के लिए, मंत्री पद के लिए, और ये लोग है कि तुच्छवत त्याग दिए उसको, और क्या धारण कर लिए, कौपीन और कंथा, एक कौपीन ऊपर कुदड़ी कंथा बस आश्रय, उसके आश्रय में हो गए। और गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी कल्लोल मग्नो मोह वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। सनातन हमारे षड गोस्वामी के विषय में कौपिन कंथा आश्रित, बड़े बड़े सच्चे अच्छे नीति के श्लोक बताए गए, कौपिनवंतम खलु भाग्यवंतम। वास्तव में त्रिभुवन में कृष्ण प्रेम में पागल होकर जिन्होंने कौपिन और कंथा धारण कर लिया, भाग्यवंतम, ये सबसे बड़ा भाग्यशाली राजा इनके आगे क्या है। कौपिन में भी 8 गांठ हो लगी, कौपिन भी फटा हुआ है, लेकिन इंद्र उसके सामने क्या चीज है जो कृष्ण प्रेम में घूमता है। ये ब्रज के रसिकों की, ब्रज के प्रेमियों की वाणी है और आचरण है और रस है, ये वास्तव में शुद्ध भागवत के लक्षण है। त्रिभुवन है, त्रिभुवन का राज्य भी जिनको एक क्षण कृष्ण विस्मरण के आगे नहीं सुहाता, इस चेतना में रहने वाले वैष्णव है। महाप्रभु कुछ बोले नहीं, लेकिन सनातन गोस्वामी समझ गए, और वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, आप लोगों ने सुना पढ़ा है। वहां गए एक 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 साधु, फटा थोड़ा अपना कंधा माने कंबल धो रहा था, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि सुनिए महाशय, ये जो आपका ये टूटा फूटा हुआ कंथा है कंबल, हमको दे दीजिए और ये हमारा उन्हीं बड़ा महंगा कंबल आप ले लीजिए। वो कहा भाई क्यों मजाक कर रहे हो, सुबह सुबह ऐसे थोड़ी कोई होता है, अरे भाई महाप्रसाद में भी खीर अपने भाग में आया हुआ नहीं देता है, उसको सब्जी दो इधर खीर बराबर, भगत भगत भी ऐसा ट्रांसफर नहीं करते हैं प्रसाद, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो आप है कि इतना भारी सर्दी में इतना भारी कंबल दे रहे, उल्टे हमारा कंधा मांग रहे, ऐसा मजाक मत करिए गरीब के साथ। बोले हम मजाक नहीं कर रहे, हम सत्य कह रहे, कृपा करिए हम पर, हम बड़ी दैन्यता से कह रहे थे, ऐसा नहीं कि ए तुम्हारा लाओ चल ले लो चल बस खुश रहो जाओ, जैसे हम लोग चार नाठ खुश रहो कुछ तू हूं कुछ राख बनो, बड़े अहंकार से देते लेते ना हम लोग, ऐसे नहीं थे सनातन गोस्वामी, बड़े बिना कृपा करके दे दीजिए। एक दैन्य अद्भुत है, वो तो दृश्य देखे नहीं है लेकिन वो शब्द बता रहा है सनातन गोस्वामी। तो दे दिया और वो कंबल टूटा फूटा ओढ़ कर आए महाप्रभु के सामने, तब चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए बोले वाह अब वैरागी दिख रहे हो, सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण करके ये उन्हीं कंबल शोभा नहीं देता। कृष्ण प्रेमी वैरागी के लिए उसके अनुसार वेश भी होता है तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए उसको इस दशा में देखकर, यहां देखी प्रीत है गौर भगवान। कोई भक्त विषयों से इंद्रिय तृप्ति से विमुक्त होकर भगवत प्रेम और गुरु आज्ञा शास्त्र में सेवा में लगता है तो महाप्रभु का प्रेम का प्रसन्नता का पात्र बन जाता है, भाजन बन जाता है। ये दिखाया गया सनातन। अब बताओ, बताया नहीं कि ऐसे करो, सनातन गोस्वामी को आज्ञा नहीं दिया कि कंबल ठीक नहीं है, वही समझ गए कितनी सूक्ष्म बुद्धि। हमें भक्ति राज्य में गुरु की कृपा यस्य प्रसादात या वैष्णव की प्रसन्नता या भगवत प्रेम प्राप्त करना है, सेवा से इंद्रियों को बुद्धि को मन को इतना शुद्ध बनाना पड़ेगा कि बिना कहे समझ में आ जाए कि ऐसे करना चाहिए और ऐसे ही शोभा देता है। हम लोग तो कभी कभी अभी इतनी दैन्य दशा में है कि कहने के बाद भी ना समझ में आता है ना करते हैं, और करते हैं तो ना कोई रुचिपूर्वक करते हैं। अब देखिए यहां कहां नहीं गया, समझ गए कि महाप्रभु क्या चाहते। जब शुद्धता हृदय की होती है ना तो दिव्य ज्ञान समझ में आता है कि ऐसे होना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। ये हमसे, ये हमारे आचार्य गुरु चाहते हैं, नहीं तो आदेश नहीं। क्योंकि गुरु भी किंतु प्रभुर्य प्रिय तस्य, वो हमेशा उसी भाव में रहते हैं कि मैं दासों के दासों का दास हूं। वो तो परंपरा निर्वाह करने के लिए गुरु पद को धारण करते हैं। सच्चे गुरु न जन्म न धनम न, उनको कोई रुचि तो होता नहीं उसमें, तो क्यों वो अपने आप को गुरु समझकर आदेश देते फिरे, ऑर्डर करते फिरे। नहीं, वो दास समझते हैं। और फिर आपको अपनी गलती से तब कितना सूक्ष्म बनना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा मधुर स्निग्धस्य, भागवत में शब्द आया है गुरु गुह्यम अपि उत, सीक्रेट सीक्रेट बात गुरु बताएगा। कब बताएगा? जब शिष्य में स्निग्धता होगी, सरलता होगी। जैसे स्निग्ध माने घी, गुरुजी व्याख्या का, जैसे द्रवित होता है द्रव घी, ऐसे ही जिस शिष्य का हृदय सरल है, सेवामय है, समर्पित है, तो कभी कभी कृपा करके गुरुजन भक्ति का रहस्य उतह बोलेंगे। नहीं तो साधारण बात बोलते रहेंगे, बोलो हमको लगता है कि हम ही सही है। बिना शिष्य बने गुरु बन जाएंगे, दूसरों को भी बर्बाद करेंगे फिर हम आगे चलकर क्योंकि हम ही नहीं समझे हैं परंपरा को या हमारे गुरु के सिद्धांत वाक्यों को। सनातन गोस्वामी का ये उज्ज्वल चरित्र है, एक समुद्र के समान है। समय में जितनी आवश्यक अनुकूलता है, हमको कहा गया है कि 9:30 तक कहिएगा, इसलिए मैं कुछ बढ़ा रहा हूं। दो कथा अब देखो, ये तो प्रसंग मिला वैराग्य का सनातन गोस्वामी से, और बिना समझे कितने सूक्ष्म बहुत सारी बातें हैं आप सुने हो, इसलिए हम कुछ इस प्रसंग के अनुसार जो संदेश है, जो भक्ति में हमारी भक्ति में प्रगति करता है ऐसा मैसेज उनका आस्वादन करने का प्रयास कर रहे। जब वो वहां से भागे तो साथ में एक ईशान था जिनके पास 8 सोना मोहर थी ना, और वो पहाड़ पार कराने वाला एक ज्योतिषी होटल में रखता था। ज्योतिषी भी बढ़िया था कि होटल में जो ठहरा है उसकी जेब में कितना है उसको पता चल जाता था। हम भी उस ज्योतिषी को ढूंढ रहे हैं कहीं मिल जाए, कि उसको ऐसे ही पता चल जाए कि इनकी जेब में कितना है। आजकल के ज्योतिषी को ये पता नहीं। हमारे एक गुरु बंधु है राधा कृष्ण प्रभु बिहार, जो वो अपना सत्य बात बता रहे, वाराणसी में जब पढ़ते थे तो वहां गए गंगा तट पर, तो एक ज्योतिषी था, तो बाय फोर्स का हाथ दिखाओ हाथ दिखाओ, ये तो सब वैष्णव उनको रुचि, तो हाथ दिखा के कहने लगा तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम भक्ति में तुम ना कोई डिग्री मिलेगा तुमको, कोई तुम्हारा प्रगति नहीं होगा, ऐसे ही घूमते रहोगे, सब बोल रहा था। तो प्रभु जी ने सुना सब, राधा कृष्ण प्रभु ने, और फिर सुनते ही कहा ठीक है हो गया तुम्हारा, लाओ 5 रुपया। तो बोले 5 रुपया तो नहीं है, सत्य नहीं था उनके जेब में कुछ नहीं था। लंबा चौड़ा भाषण करके जिद करने लगा, तब इसने एक ही शब्द बोला प्रभु जी ने कि तुम हमारा इतना भविष्य बता दिए, इतना जान लिए होते कि हमारी जेब में 5 रुपया नहीं है, तो तुम वो भी नहीं जानते हमारा भविष्य क्या जानोगे तुम इतना जान लिए होते कि हमारी जेब में फूटी कौटी नहीं है वो तुम नहीं जानते हो, और इतना जानते हो कि हम आगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। ऐसे है ज्योतिष, वो ये बता रहे थे कि प्रभु जी ऐसे ज्योतिषी होते हैं। लेकिन ये ज्योतिषी जो था वो बढ़िया था कि जेब में कितना है वो जान लेता था, और सही सही, और फिर वो ज्योति होटल के मालिक को बता देता था। तो बता ही दिया। लेकिन सनातन गोस्वामी मंत्री रह चुके हैं ना, और ददामी बुद्धि योगत्वम, जो भक्ति करता है उनको बुद्धि भगवान कृष्ण देते हैं, बुद्धि बुद्धि मतामस्मि। इतना बिना जान पहचान के स्वागत कर रहा है जैसे सास के घर जमाया गया हो भाई। इतना मैं क्यों, कोई ना जान ना पहचान, समझ गए, सीधा ईशान को बुलाए, तेरे पास कुछ है क्या, देखो मंत्र बुद्धि कहां से कहां चलती, सीधा कुछ है। सनातन गोस्वामी के विशेष पूछने पर वो बता दिया कि सात, फिर भी झूठ बोला, एक तो झूठ ही बोल दिया, आठ की बदले सात बताया, बोले निकाल, बड़ा सुंदर शब्द दिया, मृत्यु को साथ में लेकर क्यों कुचल रहे हो तुम। सातों को लेकर गए उस मालिक के पास, बोले हमारे साथी के पास सात सोना मोहर थी, हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं, आप ले लीजिए। बड़े खुश होकर कहा कि अच्छा हुआ दे दिए, नहीं तो ये तो हमको पता ही चल गया था, हमारे ज्योतिषी रखा हूं, और सात नहीं आठ है तुम्हारे के पास, अभी भी बोल देता हूं, रात को मार देता और ये भी ले लेता। अच्छा वह सामने से बता दिया, लेकिन हम खुश है आपके ऊपर, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सबको, जिस पर कृष्ण फिदा हो गए संसार उसके सामने झुकता है, ये तो सवाल ही नहीं। ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम कुछ दिन पहले भक्तों से आस्वादन कर रहे थे, मैत्रेय जी ने बड़ा लिखा है सुंदर, निम्न आपो इव स्वयं गुण मैत्रेय जी भी हरे, भगवान हरि जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उनके वैरी भी उसके स्नेही बन जाते हैं। कृष्ण प्रसन्न हो, यस्य प्रसन्न जो भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए सब उसके ऊपर प्रसन्न, ये उसका दुश्मन मारने वाला भी उनके ऊपर फिदा हो गया, कहता है कि सनातन ये संत ले लीजिए, ये सात सोना मोहर हमको नहीं चाहिए, आप रखिए और आप सुरक्षित रात भर आवास करिए, सुबह पहाड़ हमारा साथी पार करा देगा, आगे भी चिंता नहीं। लेकिन इन्हें कहा कि तुम नहीं ले लोगे तो इसके लिए कोई और मार देगा। सनातन गोस्वामी ने कहा तुम ये ले लो, पार करा दो अलग बात है, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए। और फिर वहां जाकर उस ईशान को कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहीं से लौट जाओ, सोना मोहर भी रखो लौट जाओ। देखो ईशान की गलती, महाप्रभु से मिलन होने वाला था और महाप्रभु के प्रेमी भक्त का संग छूट गया, किसके कारण, दमड़ी के कारण। सनातन जैसे साधु का संग छूटा है और महाप्रभु के प्रेम भक्ति मिलन को भी वो चूक गया, किसके कारण, कहां गल कहां मार खा जाता है व्यक्ति, ईशान का इस तरह से दुर्भाग्य ही कहिए ना, संग छूट, सनातन को सामने भेज दिया उसको वापस, भेज दिया तो भेज ही दिया। अब और हम एक कथा सुनते हैं वैष्णव के मुख से कि वो वाराणसी का ब्राह्मण विश्वनाथ जी ने भेजा था वृंदावन में सनातन के पास, वो लड़की का ब्याह था और धन की कमी थी, बोले जाओ ब्रज में एक साधु रहता है, वो बड़ा धनी है और वो तुमको मदद करेगा, सुने है ना वो कथा सब। तो सनातन गोस्वामी को ढूंढते ढूंढते यमुना किनारे, हाँ मदन मोहन जी की झोपड़ी बनाकर साधु भजन कर रहे हैं हमारे गोस्वामी सनातन जी, और वो आया, आके ही थोड़ा चक्कर खाने लगा कि विश्वनाथ जी भी झूठ बोलने लग गए, हमको धन चाहिए और पूरे ब्रज में बड़े फेमस थे, बता भी दिया कि ये धनी है, लेकिन इसके पास तो रहने का भी कुछ नहीं है, खाने के बाद ये क्या देगा। लेकिन विश्वनाथ के शब्दों पर आशा करते हुए निवेदन तो कर ही दिया कि हम इस तरह हुआ, ये सारा कथा बताए, और हमारे शिव जी के प्यारे मित्र है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के चरित्र में हमें एक बात बड़ी हृदय को छूती है कि वैष्णवानाम यथा शंभु, जिसको भागवत में कहा है भगवान के ही स्वरूप जिसको कहा गया, वे शंकर सनातन के मित्र है। शक्रेश्वर के रूप में कहते तुम इधर बैठ के जप करो, सनातन गोस्वामी हर रोज परिक्रमा करते थे गोवर्धन की, तो महादेव जी कहते थे कि तुम यहां बैठ के जप करो, तुम्हारे मुख से जप सुनना हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो शिव जी के साथ मित्र है, और वही शिव जी भेजे इस ब्राह्मण को, इसके पास कुछ था नहीं लेकिन वो पारस कूड़े में रखा हुआ, बोल दिया कि उधर पड़ा है कई दिनों से, ले लो तुम्हारा काम बन जाएगा, विश्वास नहीं होने पर सोने को सोना कर देता है लोहे को छूने पर, ये पारस। लेकिन जाते जाते सोचा, संत लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण ने सोचा कि ये साधु बाबा शिव जी ने जिसको भेजा वाराणसी हमको यहां तक, और सबसे बड़ा धनी है बोल रहा है, और वास्तव में धनी है कि पारस जैसी संपत्ति, सोने का कितना भाव है आज, 30,000, कितना
लोहा लेके खरीदे जाओ, 50 के भाव का लोखंड खरीदो, 30,000 का किलो करते जाओ, है ये था पारस, और वो कूड़े में रख रहा है, कचरा पेटी में रख रहा है। तो इसको पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास असली धन क्या है। तो वापस आया और बोला कि ये धन है जिसको तुम कचरा में रखे हो तो इससे भी महंगा, और असली धन तुम्हारे पास है। बोले है ना, तो फिर वही दो ना, बुद्धिमान था ना। बोले वही दो। बोले वो तब दूंगा जब इसको यमुना में फेंको। तो आप में से हम होते तो क्या करते? मैं ये प्रश्न सुनता हूं तो मुझे लगता है कि अगर वहां पर हम होते तो क्या करते। फिर हम वामन देव का उपदेश लेते कि भाई संतोषी नर संतोष ये ही ले लेते हैं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, मंदिर बनाना है आगे चल के काम आएगा, युक्त वैराग्य के नाम पर कुछ करेंगे, थोड़ा भोग भी हो जाएगा, युक्त वैराग्य भी नाम भी बन जाएगा, काम भी बन जाएगा, लेकिन काम अटक जाएगा, वास्तव में चुक जाएंगे, जन्म मृत्यु से छुटा बिना हम घूमना पड़ेगा, ये हम नहीं समझ पाते। वो ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के शब्दों में विश्वास पूर्वक फेंक दिया उसको। तो वैष्णव संत लोग बताते हैं कथा को कि हरे कृष्ण महामंत्र को दिया हूं वास्तविक धन दिया, और उसको देख के कृतार्थ हो गया, और कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है, उनके सारे काम हो गए होंगे, क्योंकि भगवान को जिसने प्रसन्न कर लिया उसने जो काम कर लिया। तो हम इन ईशान के और इस काशी के ब्राह्मण से क्या सीखते हैं? यही मोहर, यही सोने की बात है, जिसको रखने पर वो सनातन के संग से विचलित हो गया, प्रेम धन से विफल हो गया, और यहां पर सनातन गोस्वामी के संग से कृष्ण प्रेम धन महामंत्र को ये पा गए इसको त्यागने पर। तो भगवान भी बड़े अजब है, वो चाहते हैं कि जीव पूर्णतः पूर्णतः विषयाशक्ति से मुक्त होकर शुद्ध चित्त से हमारे पास शरणागत में, मिक्सिंग नहीं चलेगा। कृष्ण को डबल वाला नहीं चलता है, उसको प्योर चाहिए, बड़ी ऊंची कंडीशन है। इसलिए हम लोगों के लिए बड़ा भारी लग रहा है ये भक्ति मार्ग, क्योंकि कैसे छोड़े, हम छोड़ना भी नहीं चाहते रहना भी नहीं चाहते, बीच वाले हैं, थोड़ा ये थोड़ा वो, मिक्सिंग चलता है, और ऐसे ही चल, हम ये भी चाहते कि प्रभु जी ऐसे ही चलाते रहे। हम ये भी चाहते, ये हमारा दुर्भाग्य। लेकिन सनातन गोस्वामी के इस प्रसंग से, इस चरित्र से हम प्रेरणा ले सकते हैं। बड़े कहे बड़े बड़े सुंदर चरित्र है उनके, उनको रोग हो गया था, सनातन गोस्वामी रथ यात्रा में एक वर्ष गए थे वापस वाराणसी, तो फिर उनको वृंदावन भेजा महाप्रभु ने, लेकिन कहा था कि तुम हमें मिलने आना, तो पूरी मिलने गए थे, और उसी समय दूषित वायु और जल के प्रभाव से, वो भगवान की इच्छा थी न प्राकृतत्व। हाँ, रूप गोस्वामी ने कहा है ना, वैष्णव के शरीर को प्राकृत नहीं समझना है, उपदेशामृत में बुद्ध गंगा के जल की उपमा देकर, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषेर न प्राकृतत्व जन, नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये तो सब पार्षद है साक्षात, इनके लिए क्या कहना, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ शिक्षा है, उपदेश है, पढ़ना चाहिए चैतन्य चरितामृत से। वो नष्ट करना चाहते क्योंकि महाप्रभु उनको छूते रहते थे, आलिंगन करते रहते थे, कहां चैतन्य महाप्रभु का सोने जैसा चमकता हुआ दिव्य कलेवर, और कहां ये कंड रोग हो गया, पस बहता हुआ शरीर, इसलिए दैन्य वैश्य दूर भागते थे, लेकिन महाप्रभु छोड़ते नहीं थे उसको छुए बिना, इसलिए वो शरीर नष्ट करना चाहते थे कि ये छोड़ेंगे नहीं और मैं अपराध में उसको परेशान कर रहा हूं, दैन्य वैश्य ये सोच रहे। लेकिन महाप्रभु समझ गए हरिदास की कुटिया पर, उन्होंने कहा कि दूसरे की संपत्ति नष्ट करने का सोच रहा है हरिदास, विपक्ष भाव से कहते हुए, तुम्हारा धन हमारी, तुम्हारा शरीर हमारी संपत्ति है, इससे मैं बहुत कुछ करवाना चाहता हूं वृंदावन में। और फिर जब आलिंगन किया तो सोने जैसा चमकने लगा है सनातन गोस्वामी का शरीर, पुनः दिव्य हो गया हम महाप्रभु के स्पर्श, ऐसी कथा है। और आचरण भी उन्होंने दिखाया, टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित के यहां भोजन का निमंत्रण जब मिला तो रेती ज्येष्ठ मास की उस प्रखर ताप में समुद्र बालू में चलकर गए, क्योंकि दैन्यवश अपने आप को इतने हीन नीच मानते थे कि जहां जगन्नाथ जी के सेवक आते जाते हो हमको छू लेंगे तो अछूत हो जाएंगे, इसलिए वहां से तप्त बालू से चलकर गए और पूरे पांव में छाले हो गए उनको, शरीर में पांव में, क्योंकि उस बालू रेत बालू पर, चलने के कारण। और महाप्रभु पूछे उनको कहां से आए किस राह, कभी कोई हमारे यहां प्रसाद लेने आता है तो कभी कभी पूछते हैं कि प्रभु जी किस रास्ते से आए, लेकिन कहीं बाहर से आया हो या नया आया हो तब पूछा जाता है। अब पूरी में कई महीनों से रह रहे थे और कई बार गदा करके यहां गए होंगे, तो ये कोई पूछने की बात नहीं थी, लेकिन ये दिखाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के इस वैष्णव आचरण को। और पूछे कहां से आए, तो समुद्र मार्ग आई ला, सीधा कहा कि हम तब तो महाप्रभु सम गए, अरे बाप रे दिखाओ तुम्हारे चरण, तो पूरे छल्ले हो गए। रामायण में लिखा है जब भरत जी भी चित्रकूट गए तो उनके पांव में छाले हो गए थे, चलते गए थे ना, झलका झलकत पायन कैसे पंकज पुराज अशोक, जैसे तो वहां पर तो ऐसा वर्णन है कि जैसे कमल की पंखड़ी हो और उसमें झाकल बिंदु गिरता है ना, तो कैसा सुंदर लगता है, ऐसे ही छाले लग रहे थे भरत जी के पांव में, वो छलका जल है सुंदर लग रहे थे, उपमा सुंदरता की दी गई, भक्ति है वहां सुंदरता है, शुद्धता है वहां वास्तविक सुंदरता है ना। तो यहां पर भी सनातन गोस्वामी को पांव में छाले हो गए, लेकिन वो अपने आप को इतना ही नीच मानते हुए महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए उनके ऊपर। और हरिदास ठाकुर के इस प्रसंग में भी बड़ी मधुर शिक्षाएं हैं। तो इस तरह सनातन गोस्वामी का ये आज तिरोभाव है, चैतन्य महाप्रभु की प्रेम धन संपत्ति को पृथ्वी पर लाने वाले ये महान आचार्य रति मंजरी लवंग मंजरी राधा रानी की नित्य प्रिया सखी है और मंजरी है, वे कलयुग में पर दुख दुखी करुणा वरुणालय चैतन्य महाप्रभु की लीला के पार्षद बनकर पृथ्वी पर प्रकट हुए। और इतना पूरे ब्रज के अन्य संप्रदाय के लोग भी सनातन गोस्वामी के चरणों में झुकते थे, बहुत ब्रज के जाने माने और सबके हृदय में जिसने घर किया है ऐसे साधु थे ये हमारे। हम लोगों को ये सीखना है आज महा चैतन्य महाप्रभु के सनातन गोस्वामी से, ये मांगना है कि हम में वो शुद्ध वैष्णवता है कि हम अपने भक्ति के आचरण से वैष्णवों को तो प्रसन्न करे ही करे, सब जीवों को प्रसन्न करे, यहां तक कि शत्रु भी प्रेम करते थे, मत्सरता वाले लोग भी ईर्ष्या रखने वाले लोग भी हमारे गोस्वामियों से प्रेम करते थे, क्योंकि इतना उनके प्रति भी वो इतने दयनीय रहते थे और उनका भी भला चाहते थे और ऐसा आचरण करते थे। अब बताओ हर रोज गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करना मतलब क्या है, सनातन गोस्वामी के चरित्र में यही सुनते हैं कि हर रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे, हम साल में जाते हैं यात्रा में तो एक जिस दिन अनाउंस होता है कि दूसरे दिन गोवर्धन परिक्रमा है, कई भगत तो उसी दिन हो जाते हैं वहां, और क्या क्या तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कर है कितना मुश्किल, हर रोज बूढ़े होने पर भी करते थे, स्वयं भगवान ने दिया उनको जो दामोदर मंदिर में है अपने चरण चिन्ह से अंकित गिरिराज, जिनकी परिक्रमा गिरिराज परिक्रमा मानी जाती है, कितने ऊंचे पार्षद हम समझ सके, हर रोज परिक्रमा करते थे और जिसके भी घर जाते थे लोग साधु चाहते थे सनातन को, हमारा वैष्णव आचरण ऐसा होना चाहिए कि चाहे लोग, हम तो ऐसे हैं कि हमारे ही बंधु हमारे ही वैष्णव हमको नहीं चाहते, अब ये कैसी भक्ति है बताओ। और यहां पर हम सुनते हैं कि धीरा धर्जन प्रिय करो हमारे गोस्वामी के विषय में, और परशुराम चौबे के घर में भगवान कहते हैं कि इस बाबा के साथ हमको जाना, राधा मदन मोहन के प्रतिष्ठाता यही है ना, और वो भी उनसे बात करते थे, इनको भी प्रेम भक्ति के अंतर्गत होकर डांट सकते हैं, खाना है तो खाओ, रूखी सूखी खाते, आज नमक मांग रहे हो कल गुड़ मांगोगे, फिर रस्सी मांगोगे, फिर स्वीट राइस ही मांगोगे, तुम अपनी व्यवस्था खुद करो। देखो ये कितने विरक्त साधु, भगवान जिसकी सुनते हैं, सारे वैष्णव जिनसे प्रेम करते हैं, पशु पक्षी भी जिनकी इनसे प्रेम करते हैं, इतना मधुर और शुद्ध आचरण सनातन गोस्वामी का। आज के दिन पूर्णिमा के दिन उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया, हमने ऐसा संतों से सुना है और ग्रंथों में पढ़ा है कि सनातन गोस्वामी के विरह में पूरे ब्रज मंडल में सभी विरक्त साधुओं ने सभी बाबाजियों ने सभी वैष्णवों ने मुंडन कराया, बोलो इनके विरह में। रूप गोस्वामी भी थे, सनातन गोस्वामी पहले लीला प्रविष्ट हुए, उसके 26 दिन बाद कुछ कहते हैं लोग, लेकिन पूरा ब्रज शांत हो गया, जैसे जैसे ब्रज का रत्न ही आज आंखों से ओझल हो गया, सारे ब्रज के प्रेमी सनातन गोस्वामी के विरह को अनुभव करते हुए रोते हुए उसकी स्मृति में गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। आज भी ब्रज में जाइए, ऐसे राजस्थानी लोग और अन्य पंजाब के और यूपी के कई वैष्णव गिरिराज को ही गुरु मानते हैं, और उस गुरु पूर्णिमा के दिन गिरिराज जी की, हम लोग गुड़ाकेश प्रभु और मधुसूदन प्रभु, हम लोग 5-7-8 साल पहले 2-3 बार गए हैं इस तरह पूर्णिमा के दिन ब्रज में, तो गिरिराज परिक्रमा करने के लिए पहले। तो चलने की भी जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है, उसी के साथ व्यवस में आपको चलना पड़ा। आप चलोगे आगे चल के परिक्रमा कर लो, आज के दिन ये नहीं होता, इतनी भीड़, लाखों लोग जो आज पूर्णिमा के दिन जो गिरिराज परिक्रमा जितने लोग करते इतना कोई दिन में नहीं करते हूं साल में, गिरिराज को गुरु मानते हुए। और वैष्णव सनातन गोस्वामी के प्रति आदर प्रेम विभक्ति, और वो हर रोज गिरिराज परिक्रमा करते थे, उसी स्मृति में मुंडिया पूर्णिमा कहते हैं हम, स्मरण आए आज के दिन को, वहां सब लोग मुंडन कराते हैं सनातन गोस्वामी के विरह में हूं आज के दिन, और गिरिराज की परिक्रमा करते हैं कई वैष्णव। तो बहुत कुछ है, आप लोग सुने पड़े हैं मेरी स्मृति में जो आया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम त्यक्ता तुष्ट मैसेज, हमारे गोस्वामियों ने सब कुछ त्याग दिया और कृष्ण प्रेम में हे राधे ब्रज देवी के चललिते, गिरिराज गोवर्धन में कहां हो राधा रानी, कहां हो कृष्ण, इसी घोषणा को करते हुए घूमते हैं हमारे आचार्य प्रेमी। और हम लोग को दिया इतना बड़ा बृहद वैष्णव बृहद भागवतम सनातन गोस्वामी ने दिया, हरि भक्ति विलास दिया शुद्ध, जो हमारे लिए उपादेय है सनातन गोस्वामी के ये ग्रंथ, इनका चरित्र, इनका नाम, इनके प्रति शुद्ध प्रेम समर्पण भाव रखने वाला महाप्रभु के प्रेम का पात्र बन जाता है, इस गोस्वामी के प्रति शुद्ध भाव रखने वाला, क्योंकि महाप्रभु के प्राण ग्रंथ है ये सारे आचार्य, जिसमें अग्रज है सनातन गोस्वामी। सभी 6 अन्य गोस्वामी इनको आदर प्रेम और बड़ा मानते थे, और राधा रानी के दर्शन कई बार वो किए हैं, लीला भी प्रत्यक्ष देखते थे, शास्त्रों के सार निचोड़ को अपने ग्रंथों में उन्होंने उतारा है, और अपने पवित्र शुद्ध आचरण से वैष्णव को कृष्ण प्रेम की शिक्षा दी है। ऐसे महान आचार्य आज के दिन लीला में प्रविष्ट हुए, हम भक्तों के लिए इन आचार्यों के चरणों में कातर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी प्रेम भक्ति धन प्राप्त हो, शुद्ध वैष्णव चरित्र हम कर सके ऐसी शक्ति दो, शुद्ध भक्ति कर सके ऐसी शक्ति आचार्यों की कृपा से ही हमें मिल सकती है। और व्यास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इतना ही कहूंगा, पूरे विश्व में आज गुरु पूर्णिमा, क्योंकि व्यास जी का जन्मदिन है, और जितने ही गुरु है सब व्याचो उचिष्ट, व्यास जी ने जो लिखा बोला है उसी को बोलकर गुरु बने हैं ना, व्यास की वाणी को ही आवृत्ति, आज तो कलयुग का इतना पाखंड है कि व्यास से विरोधी लोग भी गुरु बने हैं, व्यास की वाणी का विरोध बोलने वाले भी पाखंडी लोग गुरु बने हुए हैं, और इसीलिए आज गुरु की पूजा सर्वत्र सब जगह भारी मात्रा में होती है, होनी चाहिए, ये अपराध नहीं है। लेकिन जो भक्ति का खंडन करने वाले, भगवत स्वरूप का, भक्ति शास्त्रों का, और विरोधियों का, भोगी पाखंडी जो गुरु वेश में आ चुके हैं और इनकी पूजा भव्य रूप से होती है, पूज्या यत्र पूज्यन्ते, जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए उसकी हो रही है, और जिसकी होनी चाहिए उसकी होती नहीं, ये आज के संसार वर्तमान जगत का दुर्भाग्य है। और इसीलिए शायद प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि इन पाखंडियों के साथ मिल जाए, तो व्यास पूजा जैसा पवित्र उत्सव वैष्णव और सनातन गोस्वामी जैसे भक्तों का डिसेपियर थी, लेकिन पाखंडियों सब यही कर रहे हैं, और लोग भी इतने बुद्धू है कि भगवान को हटाकर उसी को सर्व सब कुछ मानकर उन्हीं को भगवान मानकर पूज रहे, और ये लोग पूजा भी रहे हैं खुशी से, लेकिन कृष्ण के साले इनके लिए बैठे हैं तैयार, यमराज इन सब का ट्रीटमेंट करने के लिए, गुरु चेला नरक में ठेलम ठेला के लिए ऐसे पाखंडियों के लिए यमराज जी बड़ी व्यवस्था किए हैं, अभी कुछ भोग लो महाराज, लेकिन फिर तुम्हारी दशा होगी जो होनी है। लेकिन वास्तव में व्यास की पूजा होनी चाहिए। चैतन्य भागवत मध्य लीला 5वां अध्याय जरूर पढ़िएगा, चैतन्य महाप्रभु ने व्यास पूजा के दिन क्या किया, अगले दिन कल के दिन बुलाया सभी भक्तों को, और पूजा व्यास पूजा, कल व्यास पूर्णिमा है, किसकी होनी चाहिए, व्यास जी की पूजा होनी चाहिए, किसके घर होगी, नित्यानंद प्रभु से पूछा, नित्यानंद प्रभु ने कहा श्रीवास के घर। बोले वहां हर रोज कीर्तन होता है तो श्रीवास के घर होने चाहिए। तो श्रीवास को महाप्रभु ने कहा ठीक है। तो श्रीवास ने कहा मेरा बड़ा सौभाग्य है कि सभी वैष्णव हमारे घर आएंगे और हमारे घर व्यास पूर्णिमा होंगी। लेकिन ठीक है, मतलब महाप्रभु का पूछने का था कि व्यवस्था है, क्योंकि वैष्णव लोग चाहते थे कि हमारे घर आए, लेकिन बेचारे हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम होता है धन, वो धन नहीं होता तो समस्या होती है। लेकिन श्रीवास ने कहा आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, सब हो जाएगा, लेकिन आप रहिएगा, विधि क्या है हमको पता नहीं है। और नित्यानंद प्रभु तो वहीं रहते थे श्रीवास के घर। महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु की पूजा होगी व्यास पूर्णिमा के दिन, आदि गुरु बलराम वही है और संकर्षण शेष जो भी लीजिए वही है, और महाविष्णु फिर उनसे, फिर व्यास तो शक्त्यावेश बहुत बहुत नीचे रह जाते हैं। तो नित्यानंद की पूजा कराने का संकल्प महाप्रभु सोच लिए, आज के दिन सुबह उठकर गंगा स्नान करके सब गए श्रीवास के घर कीर्तन करते हुए। नित्यानंद प्रभु भी थे, और बड़ी सुंदर कथा है, वही व्यासा अवतार वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है ये भागवत, चैतन्य भागवत, चैतन्य लीला और व्यास वृंदावन दास। तो वही व्यास जी लिखते हैं कि नित्यानंद और चैतन्य प्रेम में इतने नाचे, बढ़िया से कीर्तन हुआ, और जो भक्त अंदर आया फिर तो डब बंद कर दिया दरवाजा, सबको एंट्री नहीं था उस श्रीवास में, आंगन में, व्यास पूर्णिमा के दिन। अतरंग पार्षद को लेकर धीरे धीरे कीर्तन चालू हुआ, फिर उदंड कीर्तन चालू हो गया। महाप्रभु अपने भाव में, नित्यानंद प्रभु अपने भाव में, यमुना का वृंदावन का स्मरण करते, गोप बालों के बीच जैसे खेलते, ऐसे ही श्रीवास आंगन में दोनों भाई कृष्ण बलराम गौरांग नित्यानंद नाचने लगे, खेलने लगे। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु भाव मुद्रा में आकर षड रूप बना लिए, शंख चक्र गदा पद्म हल और मुसल, छह में हो गए। और मदिरा लाओ, सीधा ऑर्डर, मदला, ये जो है वो वारुणी कहते हैं ना बलराम जी जिसको पीते हैं। चैतन्य चरितामृत में कादंबरी, भागवत में भी कादंबरी शब्द दिया है वारुणी के लिए, कादंबरी लाओ। तो सब भक्तों ने क्या किया, वो गंगा जल के झड़ के घड़े पड़े थे, बोले ये लीजिए कादंबरी महाप्रभु। तो गंगा जल पीते हुए कादंबरी ये न भसे, इसको लग रहा था कि मैं वारुणी ही पी रहा हूं। महाप्रभु बलराम आवेश में, नित्यानंद नाच रहे, सब भक्त नाच रहे, कुछ भक्त नाचे नाचते खड़े हो गए, और महाप्रभु बलराम आवेश में षडभुज रूप है, और कादंबरी, वो मतलब कादंबरी समझकर वो जल पीने लगे, गंगा जल। कादंबरी मतलब कदम वृक्ष से झरने वाली, ऐसे भी अर्थ किया गया है। भागवत 10:65-19 जहां पर बलराम जी का वर्णन है, वो 2 महीने गए थे ब्रज में, तो वहां पर वो रास किए थे, कौन सा रामघाट, जय जय रामघाट रोहिणी नंदन। तो रामघाट की बात है, उस लीला में भागवत में श्लोक आया है कि वरुण देव प्रेषित देवी वृक्ष कोटराज, वरुण देव ने प्रेरणा किया कि हे देवी तुम इस वृक्ष की कोटर, माने समझते हो जो शाखा जहां से निकलती है और उसमें खड़ा हो जाता है, वहां से प्रकट हो जाओ। भागवत में लिखा है कि वरुण देव ने प्रेरणा दी कि हे वारुणी देवी तुम इस वृक्ष के वृक्ष से झरने लगो, प्रकट हो जाओ। तो सनातन गोस्वामी का सबसे बड़ा ग्रंथ उपलब्धि भागवत वैष्णव जगत के लिए, बृहद वैष्णव तोषणी दशम स्कंध की टीका, तो उसमें सनातन गोस्वामी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये जो बलराम जो मदिरा पी रहे हैं, जो वारुणी जिसका नाम है, वो वरुण देव की पुत्री है, और वरुण देव और सभी मदिरा की अधिष्ठात्री है वरुण देव की। तो भगवान वरुण ने उसको कहा कि हे पुत्री तुम जाओ बलराम की सेवा के लिए। तो फिर बलराम जी वहां मत वाले हो गए थे। तो ये शब्द आया कादंबरी वारुणी, तो इसका दशम स्कंध के जुड़ा हुआ कुछ प्रसंग में बताया जो सनातन गोस्वामी लिखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मदिरा जल पीने लगे गंगा जल, उसी समय नित्यानंद प्रभु भी फिर भावावेश में आ गए, हमारा हल और मुसल आप धारण कर लिए। तो नित्यानंद जब नाचते थे ना तो अवधूत, उसकी उपमा चैतन्य भागवत में सिंह से या हाथी से दी गई है। जंगल में जब हाथी पागल हो जाए या सिंह मतवाला हो जाए जंगल, तो किसी के हाथ में वश में नहीं आता। लेकिन चैतन्य रे वचन अंकुश, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो वचन है वो मतवाले हाथी स्वरूप नित्यानंद के लिए क्या है, अंकुश है। ए नित्यानंद बस, तो चैतन्य महाप्रभु का सुनते थे, बाकी कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो बड़ा सुंदर नित्य है। फिर नित्यानंद प्रभु को रोका गया क्योंकि अवधूत वेश में कुछ शरीर शुद्धि नहीं रहा, कुछ शुद्ध भक्तों के लिए लीला आस्वाद नहीं है, बाकी तो प्रश्न ही प्रश्न खड़े हो जाएंगे इसको कहने पर, हम कनिष्ठ भक्तों के लिए ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया, कैसा क्यों की गई, लीला नहीं की गई, अपने आनंद के लिए लीला की गई, आप लोग ऐसा क्यों कैसा क्यों करते रहो। भक्त निज भक्त आस्वादने करोधि विविधम क्रिया, मेरे भक्तों के आनंद के लिए मैं लीला करता हूं, इसका कोई कारण नहीं होता, कोई शिक्षा नहीं होती, अपना निजी आस्वादन है इन दोनों का। और फिर अद्वैत आचार्य थे, हरिदास ठाकुर थे, उसकी भी कथा है, नाटा मुझे बुला कर लाया, मैं सो रहा था, ये सब बताया। फिर अंत में ये भी बताया कि किससे उपमा दी गई, तो प्रहलाद और शुक से। अद्वैत आचार्य कैसे लगते हैं, तो श्रीवास ने कहा शुक जी लगते, प्रहलाद लगते। महाप्रभु गरम हो गए क्रोध में और एक हरे कृष्ण दिया उसको, किसको, श्रीवास को। अभी पहली बार सुना मैं भी ये प्रसंग, क्या बोला, अद्वैत आचार्य को किसकी उपमा दे रहे हो, वो सुखदेव कल का बच्चा है, वो प्रहलाद अभी अभी भजन किया, तू विष्णु है वो साक्षात, मतलब महाप्रभु अद्वैत आचार्य का, और ये मेरे को बुलाया इसलिए मैं इधर आया हूं, नहीं तो इसके कारण मुझे आना पड़ा, इसको तुम ऐसे उपमा मत दो, मतलब प्रेम से शिक्षा देते हुए श्रीवास को कहा इस तरह। और कहा उठाओ अभी, चलो टाइम पे, अभी ज्यादा मत करो, तुम्हें समय बहुत हो गया, व्यास पूजा मनाना है। तो श्रीवास हार लेकर आए, व्यास जी का विग्रह बनाया गया, सब पूजा अर्चन विधि सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, किसको पहना है, अभी हाथ में जिसको माला है श्रीवास के, किसको पहना है। नित्यानंद बहु सोच रहे, नित्यानंद खड़े है, श्रीवास सोच रहे, नित्यानंद नाच रहे हैं, चैतन्य आदेश दे रहे, व्यास जी किसको पहना है। अभी तीनों गुरु या पुरुषा अवतार, शक्तिदेश अवतार, और इसको क्या कहेंगे, चैतन्य महाप्रभु को प्रेमा अवतार, जो भी कहो, सार अवतार सार, अब क्या करें। तो महाप्रभु के गले में डालने की सोच रहे, कभी तो नित्यानंद प्रभु के, नित्यानंद प्रभु के गले में डालने जा रहे, तब कहा चैतन्य के गले में डाल दो। नित्यानंद प्रभु जाके उसके एक दूसरे को, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद के गले में डालो और उनकी पूजा होनी चाहिए, यही है व्यास पूजा। नित्यानंद प्रभु का नहीं नहीं नहीं, सब अवतार सबकी पूजा जब हो जाएगी, जब आपकी पूजा होगी। तो ये इसको कह रहा है, उसको कह रहा है, बड़े सुंदर तरीके से। और अंत में कीर्तन ही हुआ, व्यास जी की तो विग्रह रह ही गया, कीर्तन ही व्यास पूजा हो गया। तो हमको बड़ा याद आ रहा था, कमलोचन प्रभु एक बार बता रहे थे कि व्यास पूर्णिमा के दिन व्यास की पूजा होनी चाहिए, और व्यास की अनुसार जो शिक्षा दी है उस गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि ये गुरु हमें व्यास वाणी के द्वारा भगवान से जोड़े, तो इस गुरु की पूजा के माध्यम से परंपरा से भगवत पूजा, भगवत भगवान की पूजा उस शिष्य के द्वारा पहुंचती है भगवान तक, है ना। गुरु की पूजा करना, गुरु के माध्यम से व्यास की पूजा हो रही, लेकिन वो बड़ा सुंदर बता रहे थे कि उस व्यास जी पूर्णिमा के दिन गुरु भी पूजा करता है। तो व्यास पूर्णिमा का सार यह है कि एक गुरु सब शिष्यों को लेकर भगवान की पूजा करे। गुरु की गुरुता यही है ना कि सबको भगवान से जोड़े। तो व्यास जी के लिए भागवत में 1:3:21 वो श्लोक आया है, तत सप्त दशे जातो सत्यवत्या पराशरा चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्प मेधस। अल्प बुद्धियों के लिए व्यास जी ने एक वेद की शाखा का विस्तार किया है। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लाय रविंद पत्त नेत्रम येन त्वया भारत तेल पुनो प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। व्यास जी के लिए प्रणाम मंत्र में आया है कि व्यास जी ने चार वेदों का विभाजन किया और फिर द्विज बंधु के लिए इतिहास महाभारत ये रचना की। तो व्यास जी का बड़ा उपकार है वैष्णव जगत के ऊपर, जिन्होंने शास्त्र दिया, और वो भगवान के शक्त्याभेश अवतार है। तो उसी व्यास जी का, जिसको हम सत्यवती सूत्र अथवा पाराशय कहते हैं, पाराशय मुनि विष्णु पुराण की कथा भी आप लोग जानते हैं, उस यमुना के द्वीप में सत्यवती और पाराशर से इनका जन्म हुआ, इसलिए द्वीप अयन द्वैपायन कहते हैं, काले थे इसलिए कृष्ण द्वैपायन, और वेदों के विस्तार किया इसलिए व्यास, और पराशय के पुत्र इसलिए पाराशय व्यास जी के नाम, बद्री का आश्रम में तपस्या किए थे उसका आश्रय लिए थे इसलिए बादरायण व्यास जी को कहते हैं। तो और उन माता को फिर कहा कि मैं, तुम जब भी पुकारोगी मैं आ जाऊंगा, और फिर तपस्या साधना में और वेदों के विस्तार में पूरा जीवन व्यास जी लगाए। और हमें याद रखना चाहिए कि बद्री का आश्रम में भी नारद जी में जब व्यास जी से मिलन हुआ, भागवत की प्रेरणा दी गई, तब भी वहां पर भागवत प्रमाण है कि नारद जी ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हो भागवत, समाधि में इसकी भागवत कहा नहीं है, भागवत तो आप जानते ही हो, भगवान के अवतार हो, लेकिन आपने उसको लिखा नहीं, उसका प्रचार प्रवाह नहीं किया, आप सब कुछ लिखे तो आप तो समाधि में ही भागवत की रचना की। गणेश जी के फिर लिखाया, लेकिन तो हमें समझना चाहिए कि व्यास जी भागवत के अंतर्गत परंपरा में भी है और भागवत को देने वाले भी वही है ना, इसीलिए हम प्रणाम करते हैं, नारायण नमस्कृतम नरम चैवम देवीम सरस्वती व्यास। तो ये व्यास जी कृपा करिए कि आपके द्वारा लिखे हुए शास्त्रों का सार हमारी बुद्धि में आए और हम भगवत सेवा में शुद्ध भाव से लगे रहे। व्यास जी के जन्मोत्सव में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, सनातन गोस्वामी के तिरोभाव में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और समय हो गया है, हम सभी वैष्णव के लिए निमंत्रण भी है, हम लोग राधा गिरधारी मंदिर की ओर से सभी वैष्णव हॉल में जाएंगे, वहाँ भक्ति वेदांत हॉल में, जहाँ सनातन गोस्वामी का डिसेंबर तिथि के साथ साथ व्यास पूर्णिमा के साथ साथ हम श्रील प्रभुपाद जी के परम शिष्य जिन्होंने भागवत का प्रचार किया है, इस्कान के सभी भक्तों को भागवत की विशुद्ध कथा देकर भक्ति मार्ग में प्रोत्साहन किया है, और जो अषाढ़ी बीज रथ यात्रा के दिन जिनका व्यास पूजा या आविर्भाव दिन है, परम पूज्य श्री पाद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, उनके कुछ भक्त नहीं मना पाए थे उस सेवा में, तो सब महाराज जी से लेकर परंपरा तक सबकी वहाँ गुणावली वैष्णव लोग करेंगे, कीर्तन होगा और जुहू से भक्त आएंगे, कुछ कथा भी बताएंगे और उसके बाद प्रसाद भी है सबके लिए। तो हार्दिक निमंत्रण आमंत्रण सभी वैष्णव और गिरधारी भक्त समाज, टीएमसी जो हमारे मंदिर से सभी वैष्णव, सबकी आज्ञा के अनुसार ये मैं उत्सव मना रहे हैं सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के साथ साथ। श्रील राधा गोविंद दास गोस्वामी के जो शिष्य है, जो गेट टुगेदर कई दिनों से मिले नहीं है, यही एक उत्सव होता है कि भाई गुरु जन्मतिथि या व्यास जी के सब शिष्य मिले और भक्ति मार्ग में कैसे प्रगति हो, एक दूसरों में कैसे प्रेम बढ़े। और हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए, हमारे मैं तो सुना हूं गुरु महाराज के मुख से, वो हमेशा कहते थे कि गुरु भाई शब्द भी पसंद नहीं करते थे, बोले प्रभुपाद जी तो गॉड ब्रदर का है, गॉड ब्रदर क्या होता है, भगवत भाई, गॉड मतलब गुरु तो नहीं होता, गॉड मतलब क्या होता है, भगवत भाई। तो हम सब कृष्ण के हैं और इसीलिए सब भाई है। और प्रभुपाद जी के आचरण को देखो या हमारे अन्य आचरण को देखो, दूसरे वैष्णव को अन्य संप्रदाय को भी इतना आदर प्रेम और उनके राज समझते हुए भक्ति करते हैं, तो फिर हम तो अपने आप में प्रभुपाद के हैं, वैष्णव है, तो कभी एक दूसरे से द्वेष न करते हुए, सबके गुणगान करते हुए, सबकी सेवा भावना करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे वर्तमान आचार्य प्रभुपाद के जितने भी शिष्य है, परम पूज्य गोपाल गोपाल कृष्ण गोस्वामी, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, परम पूज्य राधा, हम तो देखे हैं, आप लोग भी देखे हैं, उन लोगों को कई बार हमारे मंदिरों में आए हैं, क्लास दिए, उनका चरित्र व्यवहार हमारे सामने है, हम कहीं स्वप्न में भी नहीं देख पाते कि वो लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा करते हैं ना। सब लोग अपने आचरण से चाहते हैं कि हम सब प्रभुपाद के इस मिशन को, हरिनाम संकीर्तन को, महाप्रभु की वाणी को विश्व में प्रचार करें, और उसके लिए तन मन धन से और सब में आपस में प्रेम रखते हुए, सेवा भाव रखते हुए, तो ऐसे ही परंपरा की कृपा के पात्र बन जाएंगे। और नहीं तो कितनी हूं साधना करते रहो, अहंकार बढ़ता रहेगा, अगर ये शुद्धता सेवा भाव दास दासानुभाव नहीं है तो अपराध के कारण, वैष्णव अपराध के कारण हमारी सारी साधना उस अपराध की अग्नि में स्वाहा हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत सावधान है, सब में प्रेम रखते हुए, सबको आदर देते हुए, कृष्ण जिसने दीक्षा लिया है उसको प्रणाम करने को कहा है रूप गोस्वामी ने, दीक्षा अस्ति प्रणति, किससे लिया है वो नहीं बोला है कि इससे लिया है तो प्रणाम करो, इससे लिया है तो, ऐसा तो नहीं कहा दीक्षा, और दीक्षा का गौड़ीय दीक्षा भी नहीं होता, दीक्षा मतलब क्या है, क्योंकि गौड़ीय लोग दीक्षा देते हैं, भगवान से जो जुड़ा है शास्त्र वैष्णव परंपरा में गुरु की आज्ञा में वो वैष्णव है, तो उनसे प्रणाम करना है। अब ये तो बहुत ऊंची बात रह जाएगी भाई, आगे ही कह दिया कि जो एक बार भी कृष्ण नाम लेता है महाप्रभु कहते हैं उनको प्रणाम कर, और रूप गोस्वामी ने ये तो कहा ना आदर दो उनको, उस श्लोक में कृष्ण तो यस्य मनसा तद आदर तो देने, तो हमें हमारे गोस्वामी के शिक्षा और उनके चरित्र यही हमारा जीवन बनाना है, हमारा मन क्या चाहता है, हमारी बुद्धि क्या सोचती है। ये लोग क्या कहते हैं उनसे मतलब नहीं है, शास्त्र क्या कहता है, साधुओं ने क्या सिखाया उस अनुसार करेंगे तो हम अनायास आसानी से भगवत चरण धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बस हम सबको ये लाग, हम बोल रहे हैं तो हम महान है ऐसा नहीं है, सभी वैष्णव ये सेवा के भाव से, कोई बोलता है कोई सुनता है, बोधयंता परस्पर है, जो ज्यादा सेवा करता है शुद्ध भाव से साधना करता है वही कृष्ण का प्रेमी, कृष्ण और गुरु उनको उनके ऊपर प्रसन्न होते। बोलने वाला महान हो जाए ऐसा नहीं है, सुनने वाला कम बुद्धि ऐसा भी नहीं है, ये सब श्रवण कीर्तन भक्ति के अंग है और आचार्यों के माध्यम से सेवा भाव से वैष्णव प्रीति के लिए हम करते हैं सरल भाव से। तो बस आज के इस पवित्र तिथि पर हमको वाणी सेवा का अवसर दिया गिरधारी मैनेजमेंट ने, धन्यवाद। भावनगर में हम थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी के इस सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए और गांव गांव नगर आदि महाप्रभु वाणी हम लोग सेवा में लगे हैं, तो उसके लिए आप सभी वैष्णव शक्ति दीजिए कि इस विशुद्ध भाव से प्रभुपाद की और वैष्णव आचार्यों की आज्ञा के अनुसार सेवा करते रहे, साधना करते रहे, और हम सभी वैष्णव एक साथ सनातन गोस्वामी और व्यास जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के चरणों में हमारी शुद्ध भक्ति बढ़े, भक्ति में हमें शक्ति दे और अपना समझकर अपना बलि जरूर कहा है नरोत्तम दास के, मुझे हमको अपना मानिए और आपकी शरण में रखिए। यही वैष्णव ठाकुर के चरणों में कातर प्रार्थना के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और निमंत्रण देता हूँ हम ही सब वैष्णवों के और गुरु भाइयों की ओर से, वैष्णव भाइयों की ओर से हमारे व्यास पूर्णिमा उत्सव महोत्सव में जो हॉल में है जो 10 से 12 साढ़े 12 तक चलेगा, आप सभी आमंत्रित है, पधारिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यास पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।